نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة بقرة آیت نمبر 284-86 انشاءاللہ آج کا ہمارا لیسن ہے اور یہ سورة کا آخری سبق ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو موقع دیا کہ آج ہم اس کو سن رہے ہیں اور میرے ذہن میں آ رہا تھا وہی دن جس سے یہ سورت شروع ہوئی تھی۔ بعض دفعہ قرآن پاک کے سفر کے آغاز میں بہت سارے لوگ ساتھ ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کچھ مجبوریوں کی شکل میں، کچھ مشکلات کے نام پہ، کچھ مصلحتوں کے نام پہ، اور کچھ سستیوں کے نام پہ، اور کچھ واقعی حقیقی مجبوریوں کے نام پہ چھٹنے لگتے ہیں۔ تو پہلے تو میں اپنے آپ کو اس بات کی مبارک دوں گی کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے روح القرآن کے اس سلسلے میں ہمیں ابھی تک جوڑے ہوئے ہیں۔ تھوڑا سا محاسبہ کر لیتی ہوں میں بھی اس پورے سفر میں، جو سورۃ بقرہ کا ہم نے تقریباً ہمارا یہ سبق 40+ کلاس ڈیز میں ہوا، کیا میں نے کوئی ایک بھی دن مس کیا؟ یہ آپ اپنے سے لکھیں، یہ باتیں سننے سے زیادہ محسوس کرنے کی، اپنے آپ سے کہنے کی ہیں کہ میں نے اس میں کوئی کلاس مس کی، چھٹی کی میں نہیں آئی، آ کے بھی کچھ وقت کم دیا یا لیا، یا میں ان خوش قسمت لوگوں میں سے ہوں کہ جو ایک بھی دن مس نہیں کر سکے۔ یہ سب باتیں کسی کو بتانے اور سننے کی نہیں ہیں، کاغذوں میں تو لکھی ہوتی ہیں لیکن دلوں پہ تب لکھی جاتی ہیں جب ایک انسان واقعی اپنا محاسبہ کرتا ہے۔ اب کیا کریں، جن لوگوں کا مس ہوا میں ان سے پوچھ سکتی ہوں کہ کیا انہوں نے بعد میں اس کو میک اپ کیا؟ دیکھیے کہ ہم انسان ہیں، روبوٹ نہیں ہیں، خوشی غم دکھ سکھ چلا ہوا ہے، ہم جان کے نا اپنے پلان کے مطابق اس وقت کچھ رکھ لیں، یہ ہماری بد نصیبی ہوگی۔ میں کچھ کڑوی باتیں کروں گی کیونکہ آپ اسٹوڈنٹس ہیں اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بچوں والا پیار ہوتا ہے، یہ باتیں دوسروں کو نہیں کہہ سکتے۔ شاگرد جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ استادوں پہ نظریں رکھتے ہیں تو استادوں کی بھی بہت بڑی نظریں شاگردوں پہ ہوتی ہیں، تو کچھ چیزیں تربیت کے ناطے سے، اور میں یادگاری کے لیے کہہ دیتی ہوں کیونکہ جب ہماری یہ سیریز پوری ہوگی تو آج کی آواز میں چینج ہو سکتا ہے فرق، کیونکہ مائک کا فرق ہے۔ ہمارا کورس تو ناروے سے چل رہا ہے الحمدللہ، اسلو سے، لیکن آج کا یہ سیشن ہمارا کارک کی اس خوبصورت جگہ سے ہو رہا ہے جس میں ہماری ایک بڑی اچھی پیاری سی کلاس بیٹھی ہے، وہاں والے ادھر ہیں، آج ان کو قربانی دینی پڑی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ روز سامنے بیٹھ کے سنتے ہیں۔ اگر آج کوئی اس وجہ سے نہ کلاس میں فوکس کرے کہ استاد کی شکل نہیں دکھ رہی تو پھر اس کو تو میرا خیال ہے زیادہ دیر آگے چلنا بھی نہیں ہے، کیونکہ چہروں کے ہٹنے سے اگر ہم دین سے ہٹنے لگیں تو پھر تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی صورت میں ہمیں کہہ دیا تھا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ۔ ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، اب آپ کی سورت آل عمران شروع ہوگی، اس میں بہت ڈیٹیل سے ذکر آئے گا غزوہ احد کا۔ تو اس میں کہا گیا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی یا شہادت کی افواہ پھیلی اور تم دین سے ہٹ گئے ہو تو پھر جاؤ، اللہ کا تو کچھ نہیں بگڑے گا، رائٹ؟ لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ ہم اس قرآن کی وجہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ باتیں اس وقت میرے آپ کے محاسبے کے لیے ہیں۔ کوئی بھی چیز شروع ہوتی ہے، جیسے 2016 شروع ہوا تھا تو بہت سارے ارمان اور بہت ساری ہماری تمنائیں تھیں نا، یہ سال اب ختم ہوگا کچھ عرصے میں، ایک مہینہ رہ گیا آلموسٹ، 2016 بھی فوت ہو جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی 2017 زندہ ہو جائے گا یا پیدا ہو جائے گا نا۔ تو آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی نیا سیشن آتا ہے اور پچھلا جاتا ہے تو کیا کھویا اور کیا پایا۔ تو آپ سب کو میں دعوت دوں گی، اگر اس وقت آپ نہیں بھی یہ کام کر سکتے اور آپ نے سوچا نہیں تھا کہ میں پوچھوں گی، تو گھر جا کے بعد پہ اکیلے میں ضرور خود سے پوچھیں، میں نے سورۃ بقرہ کو پڑھ کر کیا کھویا اور کیا پایا؟ اور اللہ کی قسم آپ میں سے کسی نے کچھ کھویا نہیں ہوگا اگر آپ نے پڑھی اور سیکھی۔ کھویا یہ ہے کہ جو مس ہو گیا ابھی سے جا کر آج اپنے لیے کام لکھیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ سورۃ آل عمران پہلے سے اچھے طریقے سے کریں، یعنی سورۃ بقرہ سے زیادہ کمٹمنٹ اور خیر اور فوکسڈ ہو کر کریں، تو آج یہ کام سب کریں، یہاں والے بھی کریں گے، ادھر والے بھی کریں گے، بعد میں جو لوگ انشاءاللہ ان ریکارڈنگ سے سیکھیں گے وہ بھی یہی کام کریں گے۔ اور وہ کیا کہ اپنے نوٹس چیک کریں، ویسے تو دل کی تختی پہ لکھا ہونا چاہیے کہ آپ کا کون سا لیسن مس ہوا ہے، نوٹس میں سے پتہ چلتا ہے، آپ ان کو الگ کریں۔ اور آپ نے بیچ کی چھٹیوں کے دنوں میں یا ویکینڈس پہ جو کلاس ڈیز نہیں ہوتے، ریکارڈنگ کے ساتھ اس کو پورا کریں۔ سورۃ آل عمران شروع اس طرح ہو آپ کی کہ آپ کی سورۃ بقرہ پوری ہو چکی ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے کل تک یہ سب نہیں ہو سکتا، اپنا گول بنا لیں، अपने आप को टाइम दें, एक हफ्ता काफी। और ये डिपेंड करता है, किसी का अगर एक ही लेसन छूटा है तो वो तो आज दिन में जाके शाम में सुन लेगा। आप वेबसाइट से सुन सकते हैं, nurulquran.com पे जाएं, ऑडियोस में क्लिक करें, वहां से सवीरुल जन्नत से सुन लें, ऐप पे जाएं, वहां कुरान तफसीर में जाएं, वहां से सुन लें। किसी को हेल्प चाहिए अपने किसी एडमिन से हेल्प ले लें, लेकिन ये कि सुन लीजिए, इससे एक तो आपको सेटिस्फेक्शन होगी और दूसरी बात है कि एक फिलअप होने का एहसास जो होता है फिर वो अगली चीज़ की जगह बनाता है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये कि अगर आज नहीं हो सकेगा तो कोई बात नहीं है, डोंट बी सैड, जो खोया उसकी फिक्र ना करें, अभी जो आगे बहुत रखा हुआ है उसको पाएं। अब इसमें मैं आपको भी शामिल करती हूँ जिनका कुछ छूटा है कुछ नहीं छूटा, राइट, दो तीन सबक छूट गए या बीच में अभी बीमार हो गई होंगी या पाकिस्तान चली गई या आप कोई भी रीज़न हुई, इट्स ओके। जिंदगी के सफर में पीछे नहीं देखते, आगे देखते हैं। वी नीड टू लुक इन द फ्रंट मिरर। अगर एक ड्राइवर सिर्फ बैक मिरर में ही देखता रहे तो कितने हादसे होंगे। तो आज से कहिए कि कोई बात नहीं, और इसमें मैं अपने तमाम गेस्ट को भी अगर कोई है तो ये दावत दूंगी कि आप अगर सूरत बकरा में नहीं शामिल हो सके, ऐसे ही आते थे कभी नहीं आते थे, गेस्ट थे, लिसनर थे या स्टूडेंट थे और हक नहीं अदा किया, तो एक नया आगाज हमारे सामने है। अलिफ लाम मीम, अल्लाह से बात शुरू होगी सूरत आल इमरान में। आज से नियत करके यहाँ से अपने आप को बांध के जाएं, किसी के जरिए भी बांध लें, ऑफिस वालों के थ्रू बांध दें, खुद से बांध दें, कमिटमेंट कर लें कि इंशाल्लाह आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम नाउ। कुछ भी नहीं गुजरा, मैं बहुत सारे लोगों को कहती हूँ कि अच्छा जी आप क्या कहते, नहीं अब तो कोर्स शुरू हो गया ना, अगला कोर्स आएगा तो बताइएगा, ये आमतौर पर होता है। तो मैं सोचती हूँ अगला कोर्स, मुझे तो अगले सांस की नहीं पता। आप देखिए ना कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह सूरत बकरा पूरी हुई, एक छोटी सूरत और एक बड़ी, यानी सूरत फातिहा के बाद सूरत बकरा पूरी हुई ना, पीछे कितनी भी हैं 112 सूरतें। कोई ना समझ ही होगा ना जो 112 चीजें छोड़ दे कि अब दो छूट गई हैं तो अब 112 फिर नए सिरे से ही लूंगा, इट्स ओके, बस नोट डाउन कर लीजिए। आप जो नए सिरे से शुरू करेंगे सूरत आल इमरान से, दे शुडंट बी वरीड अबाउट सूरत बकरा। अब ये ना आप कहें कि अच्छा आप सूरत बकरा के भी सबक याद करो, नहीं, जस्ट स्टार्ट फ्रॉम नाउ, क्योंकि कुरान जो है ना ये जहां से शुरू करें वहीं से नया होता है। ये कोई स्टोरी नहीं या फिल्म नहीं है या ड्रामा नहीं है कि पिछली किस्त मिस हो गई तो अगली किस्त की समझ नहीं आएगी, बल्कि आप देखिए कि जो इस वक्त हमारे पास तरतीब है ना ये उससे बहुत डिफरेंट है जिस तरतीब पर यह नासिल हुआ था। तो ये एक तस्कीर है, एक नसीहत है। तो ये चंद बातें थी आपके मेरे लिए, और इल्म की महफिल में फरिश्ते होते हैं, इसलिए यहाँ आते वक्त अपने दिल दिमाग सोच अपने माहौल अपने इर्द गिर्द को साफ सुथरा रखेंगे तो आप लोग खुद भी महसूस करेंगे कि इसके अंदर आपके लिए क्या है। ठीक है, ये तो थी चंद बातें आपसे मोहब्बत के साथ। अब चलते हैं हम अपने सबक पे। अब मैं चाहूँगी कि आप लिखें, क्योंकि तालिब इल्म जो लिखता नहीं है ना वो कभी भी आगे डिलीवर नहीं कर सकता और उस्ताद की गलतियों को नोट नहीं कर सकता, क्योंकि जब हम लिखते नहीं है ना तो फिर हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं होता। तो कागज़ नहीं है तो ले लीजिए, जिन्होंने आज तक नहीं लिखा वो कोशिश तो करके देखें कि हमें लिखना है, इंशाल्लाह ताला इससे आपका फोकस भी बढ़ेगा। और जो लिखते नहीं है वो हर रोज़ नहीं आते, ये भी याद रखें, लिखना हर रोज़ यानी हर क्लास में आने का जरिया भी होता है, क्योंकि इंसान को फिक्र होती है कि मेरे नोट्स ना मिस हो जाए, मैं बाद में कैसे करूँगा। तो इस वक्त इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि हम इस वक्त का भरपूर बेहतरीन फ़ायदा उठाएं, ये ना हो कि हम इसमें से कुछ नहीं ले रहे कुछ ले रहे हैं और उसी के अंदर हम परेशान हो जाएं। एवरीडे की तरह यानी हर क्लास की तरह मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ ऐसे ही करूँगी कि पहले मैं आयत को पढ़ूँगी एक एक लफ्ज़ के साथ, पहले तर्जमे के साथ करेंगे, फिर उसके कुछ मुश्किल लफ्ज़ हो जाएंगे और उसके बाद इंशाल्लाह उसकी तफसीर को देखेंगे। शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह ही का है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। इन तुब्दु मा फी अन्फुसिकुम, अगर तुम जाहिर कर दो जो तुम्हारे नफ्सों में है। औ तुख्फूहु, या तुम उसको छुपा दो। युहासिबकुम बिहिल्लाह, हिसाब लेगा तुमसे इसका अल्लाह। यानी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम किसी बात को जाहिर कर रहे हो या तुम छुपा रहे हो, अल्लाह ने तो बहरहाल उसका हिसाब लेना ही है। अच्छा, इतनी बड़ी बात, तो हिसाब लेने के बाद फिर अल्लाह क्या करेगा? फयग़फिरु लिमन यशा, जिसको चाहेगा बख्श देगा। वयुअज़्ज़िबु मन यशा, और वो अजाब देगा जिसको चाहेगा। अच्छा, ये क्या बात हुई, जिसको चाहे बख्श दे जिसको चाहे अजाब दे, क्यों? कवल्लाहु अला कुल्ली शयइन क़दीर, अल्लाह ताला तो हर चीज़ पे कुदरत रखता है। अगर एक स्ट्रेच में पढ़े, जो कुछ आसमानों में है। अब आपको मैं ना एक टोन के साथ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ, ताकि ये सिर्फ खुश्क लफ्ज ना लगे आपको, बल्कि महसूस करें, यानी ट्रांसलेशन के साथ अगर इमोशन शामिल हो जाए तो अल्लाह ताला की मुराद क्या है उस जुमले से, ये ज्यादा समझ आती है। तो मैं अगर इसको ऐसे पढ़ दूं, जो कुछ है आसमान और जमीन में वल्लाह कर, अल्लाह तुम्हारे दिलों की जानता है, वो जर करो, तो हो सकता है आप यहाँ थोड़ी देर में लॉस्ट ही हो जाए। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जो कुछ है आसमानों में और जो कुछ है जमीन में वो अल्लाह का है। अब इस जो कुछ पे आप गौर करें, और अपने इंटेलेक्ट को आप जितना ज्यादा गौर से उभार के सोचें, जमीन में और आसमान में जो कुछ है वो सब अल्लाह का है। क्या कुछ है? गाड़ियां, घर, कोठियां, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहरो बार, पाकिस्तान, यानी ये तो हम बड़े बड़े नाम ले रहे हैं ना, लेकिन आप इससे छोटा या बड़ा कोई भी नाम लेके सोचिए, सब कुछ मेरे मालिक का। अच्छा, मैंने सारी चीजों के नाम ले लिए। हम जब भी कहते हैं ना लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध, जो कुछ आसमान और जमीन में वो अल्लाह का है, तो हमारी नजर जाती है बड़ी बड़ी चीजों पे, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, नियाग्रा फॉल पे, माउंट एवरेस्ट पे, एफल टावर पे, यानी जो मादी चीजें नजर आते हैं। लेकिन हम एक बहुत छोटी चीज को भूल जाते हैं, वो क्या है? मैं, शाबाश, आई एम, मैं अल्लाह की हूँ। लिखिए, ये हकीकत कब समझ आती है? हमारे यहाँ लोगों को तब समझ आती है जिस दिन हमारा इंतकाले पुरमलाल होता है, जिस दिन हम एक्सपायर होते हैं, तो लोग कहते हैं इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमा का सीगा ना, हम सब अल्लाह के हैं और उसी की तरफ हम लौटाए जाएंगे। और उसको अगर आप वाहिद यानी सिंगुलर में ले लें, इन्नी लिल्लाही व इन्नी इलैहि राजिऊन, आप अपने लिए पढ़ें, मैं अल्लाह की हूं और उसी की तरफ मैं लौटाई जाऊंगी। सारी जिंदगी जिस हकीकत को एक इंसान भुला के जीता है, वो ये हकीकत है कि मैं अल्लाह की हूं। जब हम आसमानों जमीन की चीजों पे गौर व फिक्र करें या कराएं, तो उस वक्त हमें अपने आप को नहीं भूलना चाहिए, हम अल्लाह के नहीं, मैं भी अल्लाह की हूं। और जब बंदा अपने आप को अल्लाह का समझ लेता है, तो फिर उसके बाद तो जिंदगी में चेंज आता है, फिर ही तो असल में जवाबदेही का एहसास होता है, फिर उसके बाद ही तो आंसरेबल होना सीखता है इंसान, फिर ही तो उसको यकीन आता है कि मेरा मालिक मुझे सारी चीजों के बारे में पूछने का हक रखता है। याद रखिए कि किसी की मलकियत को तस्लीम किए बगैर आप उसकी हाकमियत को नहीं मान सकते। मैं मिसाल देती हूँ, अभी आपको लिख लें, मलकियत यानी किसी के मालिक होने को रियलाइज किए बगैर, एडमिट किए बगैर आप उसकी हाकमियत को नहीं मानते। मसलन आप ये देख सकते हैं, मसलन ये फोन मेरे सामने रखा हुआ है, अगर आप ये नहीं मानेंगे ना कि ये फोन मेरा है, तो फिर मैं अगर आप में से किसी के बच्चे के हाथ में ये फोन देखूं, तो मैं उसको कहूं कि मुझे वापस कर दें, इसको मिसयूज ना करें, आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, जो भी मैं इसके बारे में डूज एंड डोंट्स दूंगी, आप नहीं मानेंगे, आप कहेंगे आपको क्या हक होता है मेरे बच्चे से ये फोन लेने का? तो मैं कहूंगी कि एक्सक्यूज मी सिस्टर, मुझे हक यह है कि ये फोन मेरा है। वो, अच्छा, आपका फोन बच्चे ने लिया हुआ, सॉरी सॉरी। बात वाज़ेह, जब तक आप इस बात को नहीं मानेंगे ना कि ये फोन मेरा है, इसके बारे में मैं आपको कोई भी हुक्म या किसी बात से रोकू, आप नहीं मानेंगे। बस ये है दो लफ्जों की कहानी अल्लाह और बंदे की, यही है वो जो सूरत वातिया में हमने पढ़ी थी, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में। हम जहाजों में जाते हैं, हम उनके हर डूज और हर डोंट पे अमल करते हैं, ना करें तो वो कराएंगे, हमें जहाज से उतार के फेंकेंगे, चलो भाग जाओ, नहीं सीट बेल्ट बांधनी भाग जाओ, तुम्हें अपनी मर्जियां करनी है चले जाओ यहां से। हम कह रहे हैं सब बैठ जाओ और तुम चल रहे हो बीच में, चले जाओ यहां से। हम कहते हैं स्मोकिंग नहीं करनी, तुम कर रहे हो, गेट आउट, निकाल देंगे ना। वहां तो हम 2 घंटों के लिए इतने सबमिसिव हो जाते हैं और इतने ज्यादा सरेंडर्ड हैं कि वही बात है कि क़ाल लहु रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन। हम सिर्फ उसकी मानते हैं बात जिसको अपने ऊपर अथॉरिटी समझते हैं। किसी इदारे में चले जाएं, किसी गवर्नमेंट में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, हम सिर्फ उनकी बातें मानते हैं जिनको हम बड़ा समझते हैं। राह चलता अगर एक शख्स पुलिस मैन की वर्दी में खड़ा आपको रोकता है, आप रुकते हैं? कहता है कागज दिखाओ, दिखाते हैं, आपको टिकट देता है, आप लेते हैं? क्योंकि आपको पता है कि ये ऑथराइज्ड पर्सन है, ये नॉमिनेटेड है, ये गवर्नमेंट का पर्सन है। यही काम कोई और दूसरा राज चलता बंदा आपसे करवाना चाहे तो आप उसके ऊपर शाउट करेंगे, तुम कौन हो, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो। असल जो बात मुझे अभी तक जिंदगी में समझ आई है ना, वो कमी आज हम मुसलमानों में बतौर खास, दूसरों को तो एक साइड पे भी कर दो ना, सबसे बड़ा आज का हमारा मसला ये है कि लिल्लाही मा फिस समावाती व मा फिल अर्थ को नहीं मानते। ग्रज है, गुस्से अंदर एटीट्यूड है। अल्लाह को क्या हक है कि हमें इतने हुक्म दे। यकीन करें मैं अपने गुनाहगार कानों से अब ये बातें यंग जनरेशंस के हवाले से सुनती हूँ। वाई योर गॉड इज सो नाउज़ बिल्ला, मेरा नाम नहीं दिल करता लेने को। कोई कहता है योर गॉड इज सो मीन, नाउज़ बिल्ला, योर गॉड इज सो क्या कहूँ कि बस, यानी डर जाते, जुबान घूम जाती है बात करते हुए। कहते हैं योर गॉड इज सो डिमांडिंग, यानी नॉन मुस्लिम से बात हो रही थी और उसने कहा मुस्लिम्स गॉड इज सो डिमांडिंग, आवर गॉड इज सो लविंग। भाई सिस्टर कैन यू एक्सप्लेन दिस प्लीज, क्या डिमांडिंग? कहती आपके इस्लाम में तो ये कर लो वो कर लो, ये करो ये ना करो, गुना होगा ये होगा। लुक एट द जीजस गॉड, ही सेड डू एनी थिंग यू वॉन्ट टू डू, आई विल टेक केयर ऑफ दैट। और एक नॉन मुस्लिम की बात, उसने कहा कि योर प्रॉफिट एंड आवर प्रॉफिट दे आर क्वाइट डिफरेंट। चंद सिस्टर्स यहाँ इंग्लिश वाली भी बैठी हैं, मैं उनकी हेल्प भी करना चाह रही हूँ, लेकिन बात सबको समझ आती है। वो कहते हैं कि तुम्हारा नबी यानी मोहम्मद सल्लम ये बहुत सख्त है, ये कहते हैं अपने बेटों को लाओ और ज़िबा कराओ, मुराद था जिहाद। पता नहीं कौन से मुसलमानों के बेटों को नबी सल्लम बुला रहे हैं और आज किस किस के बेटे गए हुए हैं जिहाद में, अल्लाह नोज दी बेस्ट। यानी सिर्फ एक प्रोपेगंडा देकर कि तुम्हारा नबी तुम्हारे बेटों को ज़िबा करवाता है और हमारा खुदा कहे कि उसने अपना इकलौता बेटा ज़िबा कर दिया है कि तुम जीजस के सिरे चढ़ के जो मर्जी करो, कफारा। सबको पता जो मिथ है पीछे। अब आप मुझे बता सकते हैं कि जब एक मुसलमान इस तरह की बातें सोचेगा और कहेगा तो फिर बात कैसे बदलेगी? तो बात मेरा ख्याल है कि काफ़ी हद तक वाजे हो गई है कि जब तक हम किसी को दिल से बड़ा नहीं मानते हम उसकी बात भी नहीं मानते। ये भी मैं आपको बता दूं, आप अगर किसी को दिल से उस्ताद नहीं मानते ना, आप उसकी रिस्पेक्ट तो नहीं करेंगे, बजहर करेंगे सामने, जी, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्सली भी हो ही जाती है। हम किसी बड़े को आता देख के खड़े हो जाते हैं, पुलिस मैन को देख कर हम परेशान हो जाते हैं, बट जो अंदर दिल की गहराई में किसी की रिस्पेक्ट होती है ना, वो तो आंखों से, लफ्जों से, बैठने से, चलने से, उठने से जाहिर होती है। ये कभी हो सकता है कि आप किसी से प्यार भी करें और रिस्पेक्ट भी करें और फिर उसकी बात ना माने? वो भूल गई, याद ही नहीं रहा, आपने कहा था वो, दैट मीन यू आर नॉट टेकिंग हर सीरियस और हिम सीरियस। हम सिर्फ उनकी बातों पे कान धरते हैं जिनकी हमारे दिल में इज्जत होती है। इसीलिए आप चूंकि स्टूडेंट्स हैं ना, तो ये भी मेरा फर्ज बनता है आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करते ना, वो असल में अंदर से डिसरिस्पेक्टिव होते हैं, या उस सिस्टम के डिसरिस्पेक्टिव है। मैनेजमेंट हो, मैनेजमेंट छोड़ो, इनको तो खुद कुछ नहीं पता, हमें क्या पूछेंगे। या फिर वो कुरान के लिए केयरलेस होते हैं, बस हम सुन रहे हैं, लेट सी देखते हैं भला इसमें क्या है। वो दीन के लिए सीरियस नहीं होते, या फिर उस्ताद के लिए उनका होता है इट्स फाइन दैट्स ओके, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। उसका आफ्टर ऑल इफेक्ट क्या होगा या असर नतीजा क्या निकलेगा कि वो लोग फिर उस चीज से महरूम कर दिए जाते हैं। तो अल्लाह सुबहाना ताला की बात वही मानेगा जो अल्लाह ताला को दिल से बड़ा मानेगा। और मैं कहती हूँ ये पहला सबक है जो मैं और आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं। अगर हमने बचपन में ये सीखा हुआ है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मरते दम तक हमारे दिल में रहेगा, और यही फिर मरते वक्त कलमे की सूरत में जुबान से निकलता है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। पैदाइश पे जो अजान दी थी ना कान में, वो लाशौरी तौर पे हमारे दिल में चली गई थी कि लिल्लाहि मा फिस समावाती व मा फिल अर्ध। और मौत की सूरत में बस इतना ही है कि वो डिक्लेरेशन ऑफ फेथ जुबान पे आ जाता है। तो सारी बातों को जब आप और मैं लेंगे तो फिर हमें अपना एहसास होगा। मैं आपको चंद सेकंड गौर के देना चाहूंगी कि आप भी सोचें, मैं भी सोचती हूं कि क्या मैं खुद को अल्लाह की समझती हूँ? क्या वाकई मुझे इस चीज का यकीन है कि मैं अल्लाह की हूं? और अगर यकीन है तो वल्ला ही आप बहुत खुशी से कहेंगे जी यस, और अगर कमी है तो भी तौबा कर लेते हैं। तो आज का फिर इस हिस्से में से पहला सबक अपने लिए नोट करते हैं कि मैंने खुद को अल्लाह का समझना है। क्वेश्चन क्या है कि जब मैं खुद को अल्लाह का समझूंगी तो मुझे फायदा क्या होगा, या मेरी जिंदगी में क्या फर्क आएगा? फर्क ये आता है कि इंसान अपनी मर्जी छोड़ देता है, अल्लाह की मर्जी को मानने पे मजबूर हो जाता है, और उसकी जिंदगी में फिर किसी बात में अल्लाह सुबहाना ताला की बात को छोड़कर किसी और की बात को आगे रखने की जरूरत नहीं होती। क्या करें, मजबूरी क्या करें, अल्लाह की बात भी है, मुआशरा भी है, यानी पूरा मुआशरा, पूरी सोसाइटी सेकंड फेज पे चली जाती है और अल्लाह सुबहाना ताला का नाम, अल्लाह की जात आगे चला जाता है। और वो जब आगे आता है ना, तो फिर जिंदगी बहुत बड़े बड़े फैसले करवाती है। फिर इसी तरह जब आप अल्लाह का अपने आप को समझते हैं ना, बड़ा अहम नुकता है, बड़ी गौर से सुनने वाली बात है, जब आप खुद को अल्लाह का समझते हैं ना, तो आप अपनी कीमत भी पहचानते हैं। देखिए ना, एक पर्स मेरे हाथ में है और एक सदर ओबामा की बेगम के हाथ में है, मिसाल देने के लिए समझा रही हूँ। वैसे सदर ओबामा की बेगम के पास भी वो कुछ नहीं होगा जो हमारी बेगमात के पास होता है, मैं सिर्फ मिसाल देने के लिए बता रही हूँ। किसकी चीज़ है, उससे चीज़ की वैल्यू बढ़ती है कि नहीं? हमारे यहाँ कहते हैं अमीर कोई कपड़ा पहन ले तो कहते हैं ये कीमती होगा, और गरीब बेचारा महंगा कपड़ा भी पहन ले तो कहते हैं सस्ता ही होगा, लंडे से लिया होगा स्वेटर, है ना? बस जब मैं और आप खुद को अल्लाह का समझेंगे तो हम क्या हो जाएंगे? ब्रांडेड, मैं कीमती हूँ। बात वाज है, हर बंदा अपने स्टेटस की पहनता है ना, हर एक का एक अपना उठान होता है। तो जब हम अल्लाह का खुद को नहीं समझते ना, तो हम बेकार चीजों में खुद को खपा देते हैं, सेल साइंस देखते देखते बाजारों में निकल जाते हैं, खाने पकाते पकाते प्याज और लहसुन की स्मेल में इतना गर्क हो जाते हैं कि हमें वो कुरान की खुशबू नजर नहीं आती। बात समझ गए, मुझे अंदाजा हो रहा है आपकी बात से, कि जब हम अल्लाह का खुद को समझेंगे ना, फिर लकद खलकन अल इंसान फी अहसनी तकवीम, इसको समझेंगे, आई एम सो प्रेशियस, आई विल नॉट वेस्ट माई टाइम, आई विल नॉट वेस्ट माई थॉट्स, मैं अपनी सोचें नहीं जाया करूंगी, मैं अपना माल नहीं जाया करूंगी, मैं अपना वक्त जाया नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत कीमती हूं। और ये जो इंसान शराब के नशे में धुत होके या दुनिया में अपने आप को जाया करता है ना, उसकी वजह यह है कि उसने अपनी कीमत नहीं पहचानी। सुम्मा रदद ना हो असफला साफिरीन, कभी आप भी तो किसी ड्रंक को देख के सोचते ही होंगे ना कि इसकी माँ ने इसको इसलिए पैदा किया था कि ये शराब के नशे में धुत जाके किसी को मोड़ में अपना मुंह दे दे, इसको भी तो अक्ल थी ना। तो जब इंसान अल्लाह से कटता है ना, तो याद रखिए वो अपना भी नहीं रहता। वो कहते हैं ना, तू मेरा नहीं बनता अपना तो बन, जो खुद को पहचान जाता है फिर वो अल्लाह को भी पहचान जाता है। तो लिहाजा फिर इंसान जिंदगी का मकसद समझ जाता है। आज तक की अपनी जिंदगी को सामने रखें, क्या मैंने अपनी जिंदगी को उसी तरह गुजारा जैसे मुझे गुजारना चाहिए था? सवाल ले लें, क्या मुझे अगर दोबारा जिंदगी शुरू करने का मौका मिले तो मैं जिस तरह की जिंदगी आज गुजार रही हूं इससे बेहतर गुजारूंगी? क्या वाकई मैं इससे अपने आप को ज्यादा बेहतर समझूंगी करूंगी? तो इसका अंदर यह कि हमने पिछली जिंदगी में अपने आप को मिस यूज किया। हम हकीकत में अपने आप को मिस यूज करते हैं। इस पे जितना आप अपने आप को मजीद खंगाल सके खंगालिएगा कि मैंने खुद को जाया नहीं करना। आज से, फ्रॉम टूडे, 21 नवंबर है आज 2016, ये डेट लिख ले। इस वक्त भी आप, अगर मैं, हम सब सबके लिए ये बात है, अगर ये डिसीजन करें ना कि आज से अगली जिंदगी मेरी इस एहसास के साथ होगी कि मैं अल्लाह की हूं, तो यकीन कीजिए कि आज के बाद आपको एक नई सोच मिलेगी, आपके अंदर एक बिग चेंज दिखेगा आपको भी, और आहिस्ता आहिस्ता फिर दूसरों को भी दिखेगा, और आप सिर्फ बेकार चीजों में नहीं खोएंगे। बस आप देखिए ना, ये कपड़े, खाने, फर्नीचर, गाड़ियां, ये बेजान चीजें हैं ना, ये हमारी खिदमत के लिए अल्लाह ने पैदा की है ना, ये हमारे गुलाम है। एवरी थिंग इज सर्विंग टू ह्यूमन बींग। अल्लाह ने कहा वसख्खर लकुम मा फिल अर्दी जमीयन, ए इंसान मैंने सब कुछ तेरे लिए लगा दिया। और आप देखिए, रोज दुनिया में हजारों इंसान मरते हैं, ना सूरज को फर्क पड़ता है ना चांद को, लेकिन अगर एक दिन सूरज ना निकले तो हजारों लाखों करोड़ों मर जाए। तो दैट मीन के इंसान के लिए सब कुछ है, इंसान सबके लिए नहीं है। तो जिस दिन आपको इस चीज का यकीन हो जाएगा ना कि ये सारा कुछ अल्लाह ने मेरे लिए बनाया है, तो फिर हमें शर्म आएगी कि अच्छा, ये मेजबान ने तो इतना हमारे लिए किया हुआ है, तो हम इसकी खुशी नहीं पूरी कर रहे। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इसके बाद आप अपनी बाकी जिंदगी को क्वालिटी की गुजारेंगे, क्वालिटी टाइम। कोई बात नहीं, इट्स फाइन, जो चला गया चला गया, फला ता साला मा फातकुम, सूरह हदीद में अल्लाह ताला कहते हैं जो चला गया उसका गम ना किया करो, और जो बहुत मिल गया वला तफरहू, और जो मिल रहा है उसके ऊपर खुशियां ना मनाओ कि अल्लाह को भूल जाओ जिसने खुशी दी है। तो आज से जिंदगी का सफर शुरू करते हैं, चले हम सब एक नई जिंदगी शुरू करते हैं, आज के दिन को मेमोरियल बनाते हैं, इस वक्त को, इस जगह को, इस प्रोग्राम को, इसके ऑर्गेनाइज करने वालों को हम एक तोहफा देते हैं कि आज से मैं बदल रही हूँ, आज से मैं अपने आप को चेंज कर रही हूँ, आज के बाद मैंने अपने आप को वेस्ट नहीं होने देना। यकीन करें, सिर्फ एक साल बाद भी अगर हम दोबारा मिले ना, तो हम रोएंगे कि वो वक्त, वो जगह, वो लम्हा था जिसने मेरे दिल में एहसास पुख्ता किया। पता, हमें सब कुछ होता है, नथिंग इज न्यू, बट असल में हम अपनी वैल्यू नहीं पहचानते, हम ज़ाया करते हैं। हम जैसे अपनी हेल्थ को ज़ाया करते हैं ना, पता भी है शुगर है फिर भी मीठा खा रहे हैं, पता भी है ब्लड प्रेशर हाई है फिर भी नमक खा रहे हैं, है ना, पता भी है ऑयल अच्छा नहीं फिर फ्राई चीज़ें खाते हैं। सेम थिंग हम स्पिरिचुअली भी अपने आप को स्पॉइल कर रहे हैं, वी आर स्पॉइलिंग आवर सेल्फ। वजह क्या है? क्योंकि हमें एहसास नहीं है कि एक दफ़ा एक चीज़ चली जाए तो फिर दोबारा वापस नहीं आती। तो लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ध। चलिए, इतनी बात तो ये दुनिया में मेरे आपके लिए थी। ये जो लफ्ज समा बात है ना, उर्दू में भी आप बोलते हैं, थोड़ा सा लफ्जों के अंदर ले जाती हैं आपसे कि फिर आपको बात समझ आ जाएगी। समा क्या होता है? आसमान। अब आप कहते हैं आसमान ये जो आपके ऊपर मेरे ऊपर है, ठीक है, समा से समा बात है, लेकिन थोड़ा सा इसको हम अगर इंजॉय करना चाहते हैं तो समा कहते हैं बुलंदी को, समावात जमा है। अब जमीन के ऊपर है आसमान, इसलिए इसको आसमान कहते हैं। हालांकि हर वो चीज जो इंसान के ऊपर है, मतलब जैसे ये इस वक्त आप देखिए छत है ना ऊपर, रूफ, ये भी आसमान है इस कमरे का, यानी नीचे से ऊपर जो चीज होती है घर की छत को भी समा कहेंगे। फिर इसी तरह निचली से ऊपर वाली चीज, मतलब आप देखिए कि हम बेड पे नीचे मैट्रेस बिछाते हैं, फिर चादर बिछाते हैं, फिर ऊपर जो क्विल्ट है ना, तो क्विल्ट समा है किसका? बेडशीट का। बस ये समझाना चाह रही हूँ, हर चीज का ऊपर वाला हिस्सा। फिर इसी नस्बत से बादलों को भी समा कहते हैं, और ये सारे लफ्ज कुरान में आते हैं, क्योंकि बादल भी जमीन के ऊपर छाते, बारिश को भी समा कहते हैं। फिर सब्जा, ये जो ग्रीनरी होती है ना, घास, इसको भी समा कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो नीचे जमीन है ये इससे ऊपर है। और समा का रूट क्या होगा? सीन मीम वाओ, इसी से लफ्ज इसम भी है। तो ये जो हमारा नाम है ना, ये प्रोमिनेंट होता है, ऊंचा होता है, यानी हमारे अगर नाम ना होते तो पता नहीं हम किस रंग में बातें कर रहे होते, नहीं पता चलता ना। तो किसी का भी नाम आता है ना, तो उसके साथ ही उसके बारे में हमें मुख्तलिफ चीजें समझ आती हैं। फिर आप देखिए कि वल अर्थ, दूसरा लफ्ज इस हिस्से में जो था उसकी भी थोड़ी सी वजाहत देखिए, हमजा रा द्वाद इसका रूट होता है। अर्ध कहते हैं हर वो चीज जो नीचे हो, बिल्कुल समा का ऑपोजिट। ये जो जूती होती है ना, शू, तो इसका जो ये नीचे का तला होता है जिस पे हम पांव रखते हैं, उसको भी अर्ध कहते हैं, क्योंकि ये पांव के नीचे होती है। फिर इसी तरह टांगों का वो हिस्सा, आप देखिए कि हमारी टांग दो हिस्सों में है ना, तो ये जो घुटने होते हैं ना, तो घुटने का जो नीचे वाला हिस्सा ना, इसको भी अर्ध कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टांग का डाउन पार्ट है, ठीक है। फिर इसी तरह से जमीन को भी अर्ध इसीलिए कहते हैं कि ये हमारे पांव के नीचे रहती है। तो इसमें जरा सा नीचा होना देखिए, और यहां आप जरा समा और अर्ध को भी देख लीजिए, ये फितरत का असूल है। यहां से बात फिर एक ऐसी समझ आने वाली है जो हम नहीं समझते अक्सर, और वो क्या है कि फितरत में क्या है कि एक चीज ऊंची है तो दूसरी नीची है, आसमान ऊंचा है तो जमीन नीची है। कायनात में अल्लाह ने औरत और मर्द का भी यही सेटअप रखा है, कुर्सी और मेज, कुर्सी नीची है मेज ऊंचा है। ये जो आप इक्वल करना चाहते हैं ना, तो फिर वो अगर जमीन और आसमान को इक्वल कर देंगे तो यही तो क्यामत है। तो इसमें एक इशारा है कि इस कायनात में इंसान अगर फायदा उठाना चाहता है तो हर चीज को उसके मुताबिक समझना पड़ेगा, और इंशाल्लाह खैर होगी। फिर अर्थ में और बहुत डिटेल्स हैं जो आगे बहुत जगह आएगा इंशाल्लाह, तो वहां आपको बताई जाएंगी।